वो लोग बातें कर रहे थे, तभी नीचे से रौनक की आवाज़ सुनाई दी। रौनक आस्था और रश्मि दोनों को चिल्ला कर आवाज़ लगा रहे थे। दोनों हैरान हो गईं और तुरंत रौनक के पास जाने लगीं, क्योंकि रौनक की बड़े दिनों के बाद इस तरह से तेज़ आवाज़ सुनी थी। उसने काफ़ी तेज़ आवाज़ में रश्मि और आस्था दोनों को बुलाया था। जैसे ही दोनों उसके सामने गईं, रौनक दोनों को गले लगाते हुए बोली, आपको पता है मेरी सेकेंड ईयर के रिजल्ट आ गए हैं रश्मि दीदी, और इस बार मैंने टॉप किया है। रौनक ने ये गुड न्यूज़ दी और आस्था और रश्मि दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों ने बारी बारी से रौनक के माथे को चूम लिया। वहीं ध्रुव और आहान भी उनकी बात सुनकर उनके पास आकर खड़े हो गए। ध्रुव रौनक की ओर देखकर बोला, कंग्रेचुलेशंस। तब रौनक ने छोटी सी हल्की स्माइल के साथ थैंक यू बोला। तभी आहान बोला, क्या रियली तुमने टॉप किया है? पर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें पढ़ाई करते हुए नहीं देखा, और तुम तो एक नंबर के कामचोर हो, तो तुम भला कैसे टॉप कर सकती हो? मुझे लगता है कि एक बार फिर से पेपर रीचेक करवाना चाहिए, आहान ने रौनक को चिढ़ाने के लिए ये कहा गया। रौनक आहान को घूरते हुए चिढ़कर बोली, चुप करो छछुंदर, तुम्हें क्यों मेरी खुशी हजम नहीं होगी? तुम तो ज़्यादा खास पढ़ाई करते नहीं हो। दादाजी मुझे तुम्हारी सारी पढ़ाई के बारे में डिटेल बता चुके हैं, किस तरह से तुम स्कूल ना जाने के बहाने बनाया करते थे और किस तरह से अपने बैग को पलंग के नीचे फेंक दिया करते थे ताकि स्कूल जाने के टाइम पर तुम्हारा बैग ही ना मिले, और अपनी स्कूल ड्रेस के कपड़े किस तरह से गंदे कर दिया करते थे। रौनक ने सबके सामने आहान के बचपन की स्कूल ना जाने की पोल खोली। आहान घूरकर दादाजी को देखते हुए बोला, ये क्या दादाजी, अब ये भी बता देते थे कि मैं कौन से रंग की चड्डी पहनता था, क्या खाता था, क्या पीता था या क्या क्या करता था। आपने मेरी सारी बातें इस लड़की को बता दी, क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है सबके सामने मेरी इज्जत लुट गई हो। ये कहते हुए आहान मुंह बनाने लगा और झूठ मूठ रोने की आवाज़ निकालने लगा था। आहान की इस तरह की नौटंकी देखकर सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वहीं आकाश और सुमित इस वक्त गहरी सोच में थे, क्योंकि अरमान ने जो उन्हें काम दिया था हर हाल में उन्हें वो काम करना था। तभी राधिका अपने हाथ में सभी के लिए खीर का कटोरा लेकर आई। रौनक ने राधिका को पहले ही बता दिया था कि उसने टॉप किया है, इसलिए राधिका तुरंत एक शेफ की मदद से खीर बनाने के लिए चली गई थी। रौनक ने सबको खुशखबरी सुनाई तो राधिका चाहती थी कि सभी का मुंह मीठा हो। राधिका ने जल्दी ही सबको एक एक करके कटोरा देने शुरू कर दिए। वहीं एंजल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला सा महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर काफ़ी मायूसी सी थी, क्योंकि वो अविनाश को पसंद करती थी, लेकिन डिंपल की वजह से उसका इंप्रेशन काफ़ी बुरा पड़ा था, जिसकी वजह से सब लोग उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उससे ज़्यादा बातें करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही राधिका एंजल के पास खीर लेकर आई, एंजल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कटोरा उठा लिया और राधिका की ओर देखकर बोली, राधिका जी, क्या मैं आपको राधिका दीदी बुला सकती हूँ? उसने राधिका से ये पूछा। राधिका हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राधिका तो वैसे ही रिश्तों की मारी थी। उसके पास रिश्तों के नाम पर था ये एक परिवार, जो सुमित की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके परिवार की इतनी ज़्यादा बदनामी हुई थी कि राधिका की हिम्मत ही नहीं हुई वो जाकर अपने परिवार से मिल सके, और इतने सालों में कोमा में रहने के बाद राधिका को इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो गया था कि अकेलापन क्या होता है और किसी का ना होना क्या होता है। एंजल की छोटी सी शुरुआत उसे खुश कर गई थी। उसने खुशी से खीर खाना शुरू कर दिया। वहीं अविनाश तिरछा सा एंजल की ओर ही देख रहा था, क्योंकि अविनाश के अंदर अभी भी एंजल को लेकर गुस्सा था। बारी बारी से राधिका ने सबको खीर का कटोरा दिया। लास्ट में वो सुमित और आकाश के पास पहुंची, क्योंकि दोनों एक साथ ही खड़े हुए थे। आकाश ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ खीर का कटोरा उठाते हुए राधिका को थैंक यू बोला, लेकिन सुमित ने कटोरा नहीं उठाया और बोला, मुझे खीर पसंद नहीं है। तब राधिका ने बड़ा ही सिंपल सा जवाब दिया, ओके मत खाइए। ये बोलकर जैसे ही राधिका वापस मुड़ी, आकाश जल्दी से बोला, ले ले ले, खीर का कटोरा क्यों, अपनी ईगो में खीर छोड़ रहा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे खीर कितनी ज़्यादा पसंद है, और देख, मैं तुझसे अपनी खीर शेयर नहीं करने वाला हूँ, तो तुझे खाना है तो खा ले, आकाश ने ये कहा। सुमित, जो राधिका के सामने थोड़ी सी ईगो दिखा रहा था, अब खीर का मामला था। उसने सोचा, अब ईगो दिखाऊं या खीर को देखूं, तो फिर उसके हाथ से खीर जाएंगी। तब सुमित ने सोचा, ईगो तो वो बाद में भी दिखा सकता है, फिलहाल खीर का मामला है। इसलिए उसने राधिका को रोबदार आवाज में रोका, रुको, और फिर उसने खीर की पूरी थाली ही अपने पास ले ली और बिना एक्सप्रेशन के बोला, जाओ अब यहाँ से। तब राधिका पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और मन में हंसते हुए बोली, खडूस कहीं का। वहीं अबीर सिंह राठौर भी उस वक्त खीर के छोटे छोटे बाइट ले रहा था, और प्रियंका तो आस्था के चांटे खाने के बाद कमरे में जाकर बैठ गई थी, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। तभी दादाजी ने सबकी ओर देखकर कहा, अच्छा बच्चों, अब क्योंकि बहन जी की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब हम सबको वापस से शहर चले जाना चाहिए और उनके अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। दादाजी ने ये कहा तो आस्था की आंखों में मायूसी आ गई और लड़खड़ाती जुबान से बोली, लेकिन दादाजी आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरे माता पिता की बरसी है, ऐसे में हम शहर कैसे जा सकते हैं। आस्था ने ये कहा तो सब लोग आस्था की ओर देखने लगे। तभी ध्रुव और रश्मि आगे आए और बात संभालते हुए बोले, दादाजी आप नानी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग है ना हम संभाल लेंगे। और वैसे भी हम पहले ही अपने मेडिकल किट का सब सामान अपने साथ ही लेकर आए थे, क्योंकि ना जाने कब कहाँ इमरजेंसी आ जाए, इसलिए मैं तो खासकर अपना सब सामान अपने साथ ही रखती हूँ। और ध्रुव भी ऐसा ही था, सब सामान उसके पास अवेलेबल रहता था। तो आप क्यों परेशान होते हैं, हम है ना यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए, रश्मि और ध्रुव ने ये कहा तो सब लोग थोड़ा सा बेहतर फील करने लगे। वहीं अरमान बोला कि हम 15 दिन के लिए गांव की ट्रिप पर आए हैं, अब तो हम 15 दिनों के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अरमान एक टके बात कहकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ किसी और की आवाज आई, वो थी वंशिका। वंशिका ने रौनक से वादा ले लिया था कि वो हर रोज गांव उनके साथ ही घूमने के लिए जाया करेगी, इसलिए वंशिका रात को तो काका काकी के घर रुकी थी और अगली सुबह तैयार होकर वो एक बार फिर से शारदा महल में आ गई थी। वहां जाकर उसने रौनक को कंग्रेचुलेशन किया क्योंकि वो भी सबकी बातें सुन चुकी थी। अब रौनक ने भी वंशिका को गले से लगा लिया। वहीं ध्रुव वंशिका के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद उसे अपने हाथ से खीर का कटोरा देते हुए बोला, वंशिका जी आप ही अपना मुंह मीठा कीजिए ना, वैसे तो आप इतनी प्रिटी हैं। वंशिका को देखकर ही ध्रुव को ऐसा लगता था कि ना जाने ये कितनी टेस्टी होगी, जैसे किसी डिश को देखकर मुंह में पानी आता है, इस तरह से ध्रुव के मुंह में वंशिका को देखकर पानी आता था। वंशिका ने ध्रुव के हाथ से कटोरा ले लिया और वो खीर खाने लगी, क्योंकि जब से उसे ध्रुव के बारे में पता चला था कि ध्रुव असल में कौन है, तब से ध्रुव को देखने का नजरिया उसका भी बदल चुका था। लेकिन साथ ही साथ वो जिस मकसद के लिए वहां आई थी उस मकसद को वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकती थी।
रश्मि और ध्रुव ने दादाजी की टेंशन भी दूर कर दी थी, इसीलिए दादाजी ने डिसीजन लिया था कि जब तक शारदा जी ठीक नहीं हो जाती वो उनके आसपास ही रहेंगे, साथ ही साथ 24 घंटे उनके सेवा में किसी न किसी को नियुक्त कर देंगे। सब बच्चों को बता दिया था कि वो सब लोग गांव घूमने के लिए जा सकते हैं, नानी माँ की वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो उनका ख्याल रखेंगे, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो वो उन्हें फ़ोन पर बुला लेंगे। क्योंकि गाँव में मोस्टली नेटवर्क बहुत कम थे तो किसी के फ़ोन ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, सबके फ़ोन ऑलमोस्ट बंद ही पड़े हुए थे। लेकिन तब आकाश सुमित ने समझदारी दिखाते हुए गांव के लोगों से पूछताछ करके इस बात के बारे में पता लगवा लिया था कि यहां पर सबसे ज़्यादा कौन सा नेटवर्क चलता है और कौन सा नेटवर्क ज़्यादा आसपास लगा हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने वही सिम कार्ड खरीद लिया था और अब वो आसानी से एक दूसरे को फ़ोन कॉल्स पर भी कनेक्ट हो सकते थे। दादाजी के इस तरह से कहने पर आस्था शांत स्वर में बोली, दादाजी हम भी नानी माँ के साथ ही रुकेंगे, हमारा भी कहीं जाने का कोई मन नहीं है। तब रश्मि राधिका और वंशिका तीनों एक साथ उसे समझाते हुए बोली, लेकिन ये गांव तो आपका है ना, और आप अगर इस गांव में हमें नहीं घुमाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ क्या चीज़ है क्या नहीं, और आपके बिना क्या मज़ा आएगा। आस्था सबकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि गाँव में आने का शायद फिर से उन्हें ये मौका ना मिले, तो इसीलिए आस्था ने गहरी सांस ली थी और बारी बारी से सबकी ओर देखा था और सोचने लगी थी कि वो इस तरह से सबके साथ अन्याय नहीं कर सकती। सब लोग कुछ दिनों के लिए गांव में हंसी मजाक मौज मस्ती करने के लिए आए हैं और अगर इस तरह से आस्था उनके साथ नहीं जाएगी तो उन लोगों को कैसा लगेगा। इसीलिए आस्था ने लास्ट में अरमान की ओर देखा था जो कि वापस तैयार होकर वहां मौजूद था, जिसे देखकर सबको पता चल रहा था कि वो आस्था और बाकी सबको लेकर घूमने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तब आस्था मन ही मन में बोली थी, वैसे भी हमें उनके साथ जरूर जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बचपन में ये लोग फिर से पिशाच वाले पेड़ के पास चले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो शायद इस बार किसी और पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। आस्था के दिमाग से पिशाच की कहानी निकल ही नहीं रही थी और उसे इस बात का पूरा पूरा यकीन हो चुका था कि नानी माँ पर जो हमला हुआ है वो पिशाच ने ही किया है, इसीलिए आस्था नहीं चाहती थी कि कोई भी उस विश्वास भरी जगह पर जाए या उसके बारे में इतनी सी भी बात करे। इसीलिए आस्था ने डिसीजन लिया कि वो इन लोगों के साथ जाएगी और सबको सेफली साथ लेकर आएगी, और वैसे भी दादाजी तो घर पर रुके ही रहे थे और उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो नानी माँ के साथ ही रहेंगे, तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी। और अरमान ने अपने कुछ बॉडीगार्ड भी वहां छोड़ दिए थे, साथ ही 24 घंटे नजर रखने के लिए उसने एक अलग तरह के गार्ड को लगा दिया था क्योंकि प्रियंका पर उसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। फिलहाल आस्था ने उन्हें उदास मन से कहा, ठीक है आप लोग परेशान मत हो, हम आप लोगों के साथ जरूर चलेंगे, हम चेंज करके आते हैं। ऐसे बोलकर आस्था वहां से चली गई थी। वहीं अरमान भी अब आस्था के ठीक पीछे पीछे जाने लगा था क्योंकि आस्था का मूड अभी भी खराब था और आस्था को बिल्कुल भी अरमान इस तरह से उदास नहीं देख सकता था। इसीलिए जैसे ही आस्था अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर उसने सीधा बाथरूम का रुख किया, केवल आस्था का ही कमरा था जिसमें बाथरूम अटैच था, और अब आस्था बाथरूम में जाकर सीधा फ्रेश होने लगी थी। ठंडा ठंडा पानी आस्था के जिस्म पर जैसे जैसे बह रहा था आस्था को अलग लेवल का सुकून मिल रहा था, और कितनी ही देर तक ठंडे पानी का आनंद लेने के बाद उसने अपने आप को एक नज़र भरकर आईने में देखा था। हल्का हल्का उसका बेबी बम्प अब दिखाई देने लगा था। अचानक आस्था ने अपने पेट पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा था और हल्का हल्का मुस्कुरा दी थी। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पूरे परिवार को सही सलामत इस गांव से वापस लेकर जाएंगे और जितना हो सकेगा उस गांव में अब हम वापस नहीं आएंगे। भले ही इस गांव के साथ हमारे कितने ही यादें क्यों ना जुड़ी हों, लेकिन जब तक पिशाच इस गांव में रहेगा हम यहां किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं इस सोच के साथ आस्था गहरी सांस लेने लगी थी। फिलहाल अच्छे से खुद को टॉवल से क्लीन करने के बाद आस्था ने ध्यान दिया कि वो पहनेगी क्या, क्योंकि आस्था बाथरूम में अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। आस्था ने सोचा कि वो बाथरूम पहनकर कपड़े लेकर आ जाएगी और बाथरूम में चेंज कर लेगी। तो ये सोचते हुए आस्था ने शॉवर लेने के बाद अपने गीले बालों को खुला छोड़ दिया था और बाथरूम पहनकर जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि अरमान बेड पर बैठा हुआ बाथरूम की तरफ ही देख रहा था। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपने सामने देखकर थोड़ा सा शर्मा गई थी। अरमान अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिया आस्था को ही देख रहा था और तभी अचानक